चैप्टर 25 नख से लेकर शिख तक प्रत्येक अंग के वर्णन की परंपरा। रीतिकाल में नख शिख वर्णन करना कवि कर्म का एक आवश्यक अंग माना जाता था। उदाहरण, नख शिख में केवल नायिका के रूप का वर्णन होता है, पर उससे भी रूप चित्रण का कोई प्रयास हम नहीं पाते, केवल विलक्षण उत्प्रेक्षाओं और उपमाओं की भरमार पाते हैं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 144। नक्शी की पुस्तकों से श्रृंगार रस के आलंबन का ही वर्णन होता है और वे काव्य की पुस्तकें मानी जाती हैं। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 93। नफ्स मानव आत्मा की वह रूप जो कुप्रवृत्तियों में लीन रहता है। नफ्स ही रूह को बुराइयों की ओर खींचता है, इसलिए अरबी और फारसी में नफ्स परस्त को विलस विषय लोलुप समझा जाता है। उदाहरण, नफ्स के साथ युद्ध साधक का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। जैसे ग्रंथालय भूमिका पृष्ठ संख्या 137। नवोढ़ा एक प्रकार की नवविवाहिता नायिका, मुग्धा नायिका का एक भेद। मुग्धा के दो भेद होते हैं, नवोढ़ा और विश्रब्ध नवोढ़ा। नवोढ़ा में भय और लज्जा की प्रवृत्ति अधिक होती है। जब नवोढ़ा में भय और लज्जा के भाव कम हो जाते हैं, तब प्रियतम के प्रति थोड़ा विश्वास जागृत होने लगता है, तब वह विश्रब्ध नवोढ़ा होती है। उदाहरण, नवोढ़ा का भय और कष्ट भी नायिका भेद से रसिकों के आनंद के प्रसंग हैं। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 125। उदाहरण, पहले पद्मावती में प्रिय समागम का भय दिखाकर कवि ने उसे नवोढ़ा का रूप दिया, अतः उसके मुंह से इस प्रकार का प्रौढ़ परिहास या प्रगल्भता नायिका भेद के उस्तादों को खटकेगी। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 52। नांदी नाटक आरंभ होने से पहले सूत्रधार रंगमंच पर इंद्र की ध्वजा हाथ में लेकर टहलते हुए स्तुति पाठ करता है, वही नांदी कहलाता है। उदाहरण, यह तो स्पष्ट है कि आधुनिक काल का आरंभ से ही बंगला को की देखा देखी हमारे हिंदी नाटकों के ढांचे पाश्चात्य होने लगे। नांदी मंगला चरण तथा प्रस्तावना हटाई जाने लगी। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 549। नाटक वह दृश्य काव्य जिसका कथानक पुराण इतिहास या सामाजिक जीवन से लिया गया हो, जिसकी रचना अभिनय के नियमों को ध्यान में रखकर की गई हो, नाटक कहलाती है। प्राचीन नाट्य शास्त्र में नाटक के जटिल शास्त्रीय नियमों का विधान है। वस्तु नेता रस अभिनय फल आदि को लेकर अनेक नियमों उपनियमों की व्यवस्था। आधुनिक काल में प्राचीन शास्त्रीय नियमों को शिथिल करके वस्तु संघटना अभिनय और उसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उदाहरण, भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक भी काव्य के ही अंतर्गत माना जाता है, अतः उसका लक्ष्य भी निर्दिष्टशील स्वभाव के पात्रों की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में डालकर उनके वचनों और चेष्टाओं द्वारा दर्शकों में रस संचार करना ही रहा है। पात्रों की धीरोदात आदि बंधे हुए ढांचे थे, जिनमें ढले हुए सब पात्र सब सामने आते थे। इन ढांचों के बाहर शील वैचित्र दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता था। यूरोप में धीरे धीरे शील वैचित्र प्रदर्शन की प्रधानता प्राप्त हो गई। यहाँ तक कि किसी नाटक के संबंध में वस्तु विधान और चरित्र विधान की चर्चा का ही चलन हो गया। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 549। नाच सौंदर्य की प्रेषणीयता। वर्ण और मात्रा की नियमबद्धता के कारण छंद विधान में नाच सौंदर्य का समावेश होता है, और यह सौंदर्य छंदों के ठीक ढंग से पढ़े जाने पर श्रोता और पाठकों के मन को भी प्रभावित करता है। छंदबद्ध रचना के नाच सौंदर्य द्वारा श्रोता के चित्त को प्रभावित करना ही नाच सौंदर्य की प्रेषणीयता है। उदाहरण, अतः छंद के बंधन के सर्वथा त्याग में हमें तो अनुभूत नाच सौंदर्य की प्रेषणीयता का प्रत्यक्ष हास दिखाई पड़ता है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 145। नाच सौंदर्य नाच सौष्ठ कोमल मधुर शब्दों के प्रयोग वृत्त विधान लय और अंत्यानुप्रास की योजना से उत्पन्न किया जाने वाला संगीतात्मक सौंदर्य ही नाच सौष्ठ है। उदाहरण, जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्त विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाच सौष्ठ के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 46। नायक त्याग भावना से मुक्त महान कार्यों का कर्ता कुली बुद्धि वैभव से युक्त रूप यौवन से समृद्ध उत्साही दक्ष जनता का स्नेह भाजन ओजस्वी विदग्ध और कीर्तिमान व्यक्ति ही नेता या नायक होता है। उदाहरण, उनके नायक या नायिका जिस प्रकार पीड़ा अत्याचार आदि से मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए अपना प्राण तक उत्सर्ग करने वाले घोर से घोर कष्ट और यंत्रणा के मुंह न मोड़ने वाले पराक्रमी दयालु और धीर हैं, उसी प्रकार रूपमा धूर्य संपन्न भी। चिंतामणि भागे पृष्ठ संख्या 219। नायिका भेद। काव्य में आलंबन विभाव के अंतर्गत नायक नायिका भेद की परंपरा रही है। यह परंपरा नाटकों से आरंभ हुई और आगे चलकर रस निरूपण करने वाले आचार्यों ने इसका स्वतंत्र रूप से वर्णन किया। नायिकाओं के मुख्यतः तीन भेद किए गए, स्वकीय परकीय सामान्य। स्वकीय के मुग्धा मध्या प्रौढ़ा भेद के लिए और परकीय ऊढ़ा अनूढ़ा के लिए। इन अभी नायिकाओं के अवस्था भेद के अनुसार प्रोसित पतिका खंडिता कलहांतरिता विप्रलब्धा उत्का वासक सज्जा स्वाधीन पतिका और अभिसारिका आठ भेद मान्य हैं। आचार्य शुक्ल ने नारी स्वभाव के वैविध्यपूर्ण यथार्थ और मनोवैज्ञानिक चित्रण में नायिका भेद की इस शास्त्रीय पद्धति को बाधक मानकर इसका विरोध किया। उदाहरण, नायिका भेद के केवल श्रृंगार रस के आलम्बन का वर्णन होता है और नकसिक के किसी पद्य में उस आलम्बन की भी किसी एक अंग मात्र का। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 144। नासूत। सूफी साधना की पहली मंजिल। इस अवस्था में साधक कुरान और हदीस आदि में निर्धारित नियमों का पालन करता है। इसे एक प्रकार के भौतिक जगत में रहने वाले मनुष्य की प्रकृत अवस्था कहते हैं। नासूत का शाब्दिक अर्थ है दुनिया या मर्त्य लोक। उदाहरण, इब्न अरबी ने लाहूत और नासूत की व्याख्या की। इनकी दोनों एक ही परम सत्ता के दो पक्ष है। जायसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 144। निःश्रेयस, परलोक के सुख और शांति की प्राप्ति। उदाहरण, पहले तो सुख इसी लोक का सुख या अभ्युदय था, पर लोक आगे चलकर अब जब परलोक की भावना हुई तब परलोक के सुख या निःश्रेयस की कामना भी होने लगी। निदर्शना, जहां दो ऐसी बातें एक साथ कही जाएं जिनका संबंध कहीं संभव हो और कहीं असंभव, किंतु उनमें सादृश्य की अपेक्षा सादृश्य के आक्षेप द्वारा संगति बैठा ली जाए तो वहां निदर्शना अलंकार होता है। निदर्शना यमक का एक उदाहरण का यह निदर्शना और यमक का यह उदाहरण है। धरती बान बेधि सब राखी साखी डाढ़ देहि जब साखी। जैसी ग्रंथाली भूमिका पृष्ठ संख्या 114। निदर्शना, जहाँ दो ऐसी बातें एक साथ कही जाएं जिनका संबंध कहीं संभव हो और कहीं असंभव, किंतु उनमें सादृश्य के आक्षेप द्वारा संगति बैठा ली जाए तो वहां निदर्शना अलंकार माना जाता है। उदाहरण, निदर्शना और यमक का एक उदाहरण है। धरती बान बेधी सब राखी साखी डाढ़ देही सब साखी। जैसी ग्रंथाली भूमिका पृष्ठ संख्या 114। उदाहरण, प्रकरण प्राप्त वस्तुओं के भीतर से ही वे अर्थात तुलसीदास प्राय अलंकार के सामग्री चुनते थे। इस निदर्शना में उसका एक और सुंदर उदाहरण लीजिए। सिरनि शिखंड सुमन दल मंडन बाल सुभाए बुनाए केली अंक तनु रेनु पंक जन प्रगटत चरित चुराए। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 98। निद्रा, परिश्रम आदि के द्वारा परिश्रम आदि के कारण होने वाली बाह्य विषयों से निवृत्ति ही निद्रा है। उदाहरण, हास्य रस में जो निद्रा या आलस्य संचारी कहे गए हैं उनके संबंध में भी यही प्रश्न उठता है। यदि कोई हंसते हंसते थक जाए, उस थकावट के कारण उसे नींद या आलस्य आने लगे, तो यह नींद या आलस्य हसन क्रिया के श्रम का परिणाम है, हास्य के भाव का पोषक संचारी नहीं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 225। निबंध, वह गद्य रचना जिसमें किसी विषय का प्रतिपादन एक सीमित आकार के अंतर्गत रचनाकार के व्यक्तित्व के अनुकूल स्वच्छ एवं सजीव शैली या तर्कपूर्ण एवं व्यवस्थित शैली में किया जाए, उसे निबंध कहते हैं। उदाहरण, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही अधिक संभव हो सका है। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 505। उदाहरण, विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा क्रम के भीतर हिंदी साहित्य का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की ऐसे निबंधों की जानकारी असाधारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रम साधे नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े जितनी आवश्यकता है उतने ही कम में वह हमारे सामने आ रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 558। भावात्मक, जिन निबंधों से लेखक वर्ण विषय को साधन के रूप में स्वीकार करके उसके माध्यम से मुख्यतः अपने मन के भावों को व्यक्त करता है उन्हें भावात्मक निबंध कहते हैं। चिंतामणि, उदाहरण, भावात्मक निबंध में लेखक अपने प्रेम, आह्लाद, हर्ष, करुणा, क्रोध, विस्मय या किसी और भाव की व्यंजना करता है। भाव के आवेश के अनुसार कहीं कहीं भाषा में असंबद्धता, विश्रृंखलता और वेग या तीव्रता दिखाई पड़ती है। चिंतामणि भाग 3, पृष्ठ संख्या 235। वर्णात्मक, ऐसी गद्य रचना जिसमें हम वर्ण विषय का इस रूप में वर्णन करते हैं कि वह पाठक की कल्पना में सजीव और मूर्त हो जाए, वर्णात्मक निबंध के रूप में स्वीकार की जाती है। उदाहरण, वर्णात्मक प्रबंध का लक्ष्य होता है पाठक की कल्पना को जगाकर उसके सामने कुछ वस्तुएं या व्यापार मूर्त रूप में लाना। चिंतामणि भाग 3, पृष्ठ संख्या 233। विचारात्मक, किसी वस्तु या विषय के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उसका सम्यक निरूपण, तार्किक प्रतिपादन और निर्भ्रांत निष्कर्ष प्रस्तुत करने वाला ऐसा निबंध जिसका प्रत्येक वाक्य सुसंगत विचारों से युक्त हो, विचारात्मक निबंध कहा जाता है। उदाहरण, शुद्ध विचारात्मक निबंध का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी किसी संबंध विचार खंड को लिए हों। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 509। काव्य समीक्षा के अतिरिक्त और प्रकार के विचारात्मक निबंध साहित्य कोटि में वे ही आते हैं जिनमें बुद्धि के अनुसंधान या क्रम या विचार परंपरा द्वारा गृहित अर्थ के साथ लेखक का व्यक्तिगत वाग वैचित्र तथा उसके हृदय के भाव या प्रवृत्तियां पूरी पूरी झलकती हैं। चिंतामणि भाग 2, पृष्ठ संख्या 160। निमित्त, जो किसी कार्य का निमित्त या साधन हो, जैसे घड़े को बनाने में कुलाल निमित्त है, उसे घड़ा रूप कार्य का निमित्त कारण कहते हैं। उदाहरण, पर आरूढ़ वेदांत के अद्वैतवाद में ब्रह्म शब्द भेदो स्वगत सजातीय विजातीय से रहित या जगत का निमित्त और उपादान दोनों माना जाता है। जैसी ग्रंथावली भूमिका, पृष्ठ संख्या 152। नियतिवाद, शैव तंत्र सिद्धांत के अनुसार माया, कला, विद्या, राग, काल और नियति इन 5 उपाधियों की सृष्टि करती है। इनका पारिभाषिक नाम कंचुक है। ये कंचुक जीव की शक्ति को संकुचित करते हैं। जीव की स्वातंत्र शक्ति को संकुचित और तिरस्कृत करने वाली उपाधि नियति है। नियतिवाद वह सिद्धांत है जो मनुष्य में यह विश्वास दृढ़ कर देता है कि वह स्वतंत्र नहीं है, वह नियति के अधीन है, वह वही कर सकता है जो नियति के द्वारा निर्धारित है। इस प्रकार का नियतिवाद एक प्रकार का मनुष्य के निर्णय स्वातंत्र को सीमित कर देता है। उदाहरण, नियतिवाद और दुखवाद का विषण्ण स्वर भी सुनाई पड़ता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 681। निरंग रूपक, जहाँ केवल अंगी रूप से स्थित उपमान अंगों के बिना का ही उपमेय पर आरोप होता है, वहाँ निरंग रूपक होता है। निरंग केवलस्यैव रूपणम्, साहित्य दर्पण दशम परिच्छेद, पृष्ठ संख्या 721। उदाहरण, अधिकतर देखा गया है कि निरंग रूपक में तो सादृश्य और साधर्म्य का ध्यान रहता है, पर संघ और परंपरित में इनका पूरा निर्वाह नहीं हो पाता। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 111 निरवलंबता, असहायता, निराश्रयता। उदाहरण, विरह दशा के भीतर निरवलंबता की अनुभूति रह रहकर विरही को होती है। जैसी ग्रंथालय भूमिका पृष्ठ संख्या 43। उदाहरण, विरह दशा के भीतर निर्वाण, साधक द्वारा प्राप्त परम पद, जब साधक सभी प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर परमानंद की स्थिति में पहुंचता है तो उसे निर्वाण की अवस्था प्राप्त होती है। बौद्ध दार्शनिक इस अवस्था को अनिर्वचनीय मानते हैं। उनके अनुसार निर्वाण न भाव है, न अभाव है, न उभय है, न अनुभय है। सत, असत, सदसत और सदसत भिन्न इन चारों कोटियों में न जाने के कारण निर्वाण अनिर्वचनीय हुआ और अनिर्वचनीय होने से मिथ्या या स्वभाव शून्य हुआ, सत्य नहीं। बौद्ध दर्शन और वेदांत, पृष्ठ संख्या 40। उदाहरण, केवल की कहने की आवश्यकता नहीं कि यह फना बौद्धों के निर्वाण की प्रतिध्वनि है। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 137। निश्चय, जहाँ अप्रकृत उपमान का निषेध करके प्रकृत उपमेय की स्थापना की जाए वहाँ निश्चय अलंकार होता है। उदाहरण, डहकू नहीं उंजरिया निसिनी धाम, जगत जरत असलागू मोहि बिनु राम। डहकू न है उजरिया निसी नहीं धाम, निसी नहीं घाम, जगत जरत असुलागो मोहि बिनु राम। यह निश्चयालंकार सीता के विरह संताप का उत्कर्ष दिखाने में सहायक है। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 94। नृयज्ञ, अतिथि सत्कार ही नृयज्ञ है। उदाहरण, इस पंच महायज्ञ में के भीतर नृयज्ञ और भूत यज्ञ भी है। सूरदास, पृष्ठ संख्या 6। नैरंतर्य कृत विरोध, दो समान बल रसों की व्यवधान रहित उपस्थिति से उत्पन्न विरोध। उदाहरण, साहित्य ग्रंथों में जो नैरंतर्य कृत विरोध कहा है उसे श्रोता की दृष्टि से समझना चाहिए। उसका अभिप्राय यही है कि एक भाव को रस रूप में ग्रहण करके उपरांत ही तुरंत श्रोता के सामने ऐसे भाव की व्यंजना न की जाए जिससे उसे अपनी मानसिक स्थिति में सहसा बहुत अधिक परिवर्तन करना पड़े। उदाहरण, रसमीमांसा, पृष्ठ संख्या 249। नौ परी, नव द्वार, तात्पर्य नव इंद्रियों द्वारा है। उदाहरण, ऊपर जो पंक्तियां उद्धृत हैं उनमें नव परी नाक, कान, मुंह आदि नव द्वार हैं। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 62। न्यून पदत्व, पद की न्यूनता, एक प्रकार का वाक्य दोष जिसमें किसी पद की कमी के कारण वाक्य अपूर्ण रह जाता है, वहां न्यून पदत्व होता है। उदाहरण, उसमें वाक्य रचना में जो वाक्य दोष मुख्यतः दिखाई पड़ता है वह न्यून पदत्व है। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 242। उदाहरण, दोहावली में जितने क्लिष्ट दोहे हैं उनकी क्लिष्टता का ही कारण यही समास शैली है, ऐसे दोहों में न्यून पदत्व दोष पाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 45।